اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گمنام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، تو نے دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، روحیں اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، روحیں اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، تیرے جلبوں سے روشن زمین آسمان، کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا یہاں، تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، دھرم مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، سب کے بھگوان اپنے ہی اپنے جہاں، نہ سمجھ تجھ کو سمجھے نہ لڑتے یہاں، تو سمجھدار ہو کے بھی انجان ہے بدی کرتے انسان، تو بدنام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، تو نے جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، کھیل کیسا گجب تھا گزب ڈھا دیا، نیکیوں کو بدی سے ملا جو دیا، لینا کب تک تمہیں سب کا امتحان ہے، اب سبھی کے دلوں میں یہ ارمان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا کام ہے، کیا نام ہے، کیا کام ہے، اے خدا،
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के थर्ड डे कॉन्फ्रेंस के थर्ड डे में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि आप लोग हमारे ब्रह्म कुमारीज के कैंपस में बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो इसका भी बहुत बहुत आप लोग ने बहुत बहुत अनुभव कर रहे हैं और नए नए बातें सीख रहे हैं, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम वगैरह है और बहुत अच्छा टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे नई नई बातें हम शेयर करेंगे। तो अभी की इस सेशन में हम जिस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में हम कहते हैं कि आपने सुना, अभी तक तो सुना है कि राजयोग जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, और मेडिटेशन कैसे करना है कल के सेशन में भी बहुत से हमारे स्पीकर ने सिखाया है। और मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन में हम परमात्मा सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं। सुप्रीम पावर जिसको हम भगवान ईश्वर कहकर हम पुकारते हैं, हम उन पर उनको याद करते हैं, पर जब हमारा उनके साथ कनेक्शन होगा तब उनकी एनर्जी आएगी और हमारे जो मन में भावना है उसको पूरा कर सकेंगे। तो इसी टॉपिक में आज हमारे साथ कविता दीदी भी है जो हमको इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो पहले कविता दीदी की थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। बहन जी चंडीगढ़ से आए हैं और बहन जी ने 1991 में BA LLB पंजाब यूनिवर्सिटी से किए हैं। तो बहन जी ने 1984 में ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान प्राप्त किया और उसी समय से बहन जी ईश्वरीय सेवा में सबको ईश्वरीय ज्ञान और सेवा करते रहे हैं। और बहन जी अभी हाल में ब्रह्म कुमारीज का राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का जूरिस्ट विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। और बहन जी अभी चंडीगढ़ में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में सेवारत है और बहन जी अभी सीनियर राजयोग का टीचर है और उन्होंने बहुत सारे राजयोग का मेडिटेशन में क्लासेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी जगह पर जाकर लेक्चर्स और क्लासेस भी देते हैं। और साथ साथ बहन जी बहुत सारे अभियान के भी लीड करते हैं। और बहन जी ने बहुत सारे अभियान जैसे युवा साइकिल यात्रा, बिजनेस टू सर्व द सोसाइटी, एनवायरमेंट अवेयरनेस, इरेडिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन, वैल्यू एजुकेशन, ग्राम विकास जैसे बहुत सारे अभियान में भी बहन जी ने एक लीडरशिप का रोल प्ले किया है। और साथ साथ बहन जी ने चंडीगढ़ में अभी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट के लिए एक कोर्स भी तैयार किया है और जिसको कॉलेज में वैकेशन के टाइम में चंडीगढ़ में आकर कॉलेज के स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बहन जी का बहुत सारा 35 साल का राजयोग का एक्सपीरियंस है और क्लासेस कराने का एक्सपीरियंस है। तो अभी बहन जी से हम अब उनकी एक्सपीरियंस का शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आप पिछले दो दिन से, परसों शाम से और कल सारा दिन में कितनी बार ये शब्द सुना होगा आपने, ओम शांति, बहुत बार सुना ना, तो इसीलिए अब एक बार बहुत प्यार से मुस्कुरा कर बोलना ओम शांति। एक बार और, थोड़ा दांत भी दिखने चाहिए, ओम शांति। आप सभी बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, ये तो आपको महसूस हो गया होगा डेढ़ दिन के अंदर। तो इन पिछले दो दिनों में आपका भाग्य आपको बहुत सुंदर पहाड़ों की तलहटी में और बहुत सुंदर आध्यात्मिक वातावरण में लेकर आया है। लोग इसको कहते हैं भगवान का बुलावा, और ये बुलावा ऐसे महसूस होता है कि बहुतों की टिकट दो महीने पहले बनी होगी ट्रेन की, और आते आते कैंसिल हो गई दो दिन एक दिन पहले। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एक दिन पहले दो दिन पहले ही टिकट बनवाई ट्रेन की और पहुंच गए, ऐसे है ना बहुत से। तो इसीलिए लोग इसको कहते हैं कि कहीं तीर्थ पर जाना हो, अच्छी जगह जाना हो, तो यही कहते हैं कि भगवान का बुलावा आएगा तो जाएंगे। और इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि घूमने जाना हो, मॉल में जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, तो कोई भगवान का बुलावा नहीं आता, तैयार होते हैं और चल पड़ते हैं, उसके लिए वो बुलावे का इंतजार नहीं करते। और इससे पहले गीत बज रहा था, ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू रहता कहाँ। तो ये सारी चीजें एक प्रश्न थे, जिन प्रश्नों के बारे में आज हम थोड़ी सी बातें अवश्य करेंगे, और इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आप सबको बार बार कहा जा रहा है कि जहां से आप आए हैं वहां के सेंटर्स पर आप जाएंगे और रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, नहीं तो फिर ये वैसा ही हो जाएगा जैसे मिठाई की दुकान पर गए, थोड़ी सी मिठाई चखी, बहुत टेस्टी लगी, बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई है, लेकिन खरीदने की हिम्मत नहीं हुई, और या घर जाकर बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई, बस जो टेस्ट करके आ गए उसी का वर्णन और बातें करते रहेंगे कि मिठाई बहुत अच्छी थी, मिठाई बहुत अच्छी थी। तो ये ऐसा ही हो जाएगा, इसीलिए आप सभी आज कुछ बातें, वो जो कुछ भ्रांतियों के रूप में हमारे बीच में, हमारे मन बुद्धि में घूमती रहती थी कि किसको भगवान कहें, श्री कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को, अभी नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो नव दुर्गा, नौ देवियों को, ये सभी भगवान के रूप हैं, या इनको भगवान कहें, या भगवान के बेटे और बेटियां हैं, तो क्या समझें। इस तरह की बहुत सी बातें मन में घूमती रहती थी, हमारे मन में भी घूमती थी, और जब समझ में आया तो छोटी उम्र से ही, 10th क्लास में थे जब ये ज्ञान समझ में आया, और उसके बाद अंदर लगन लग गई कि सबको समझाना है, और तब से ही लग गए थे समझाने, चाहे कोई मंदिर के पुजारी हो, चाहे कोई घर में मेहमान आए हो, कोई भी अंकल आंटी आए हो, तो उनको अवश्य बताते थे कि परमात्मा में और देवताओं में क्या अंतर है, परमात्मा में और मैसेंजर्स में जो कि धर्म स्थापक आए उनमें क्या अंतर है, क्योंकि वो ज्ञान सारा यही समझा था। अब एक चीज देखिए, आप हर रोज नहीं तो कभी कभी मंदिर जाते होंगे, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा साहब, कोई मस्जिद में, जो भी आपके नजदीक अवेलेबल है, ऐसे कुछ कोई पीर बाबा के, कोई इस तरह से, तो आप कहीं ना कहीं जाते हैं, और अक्सर करके मंदिरों में एक आरती भी गाते हैं हम, वो आरती है मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव 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 बंधुश्च सखा त्वमेव, आगे त्वमेव द्रविणम। जी बहुत होशियार हैं आप, और मात पिता तुम मेरे तुमरी कृपाते सुख घनेरे, ऐसे बहुत सी बातें हम परमात्मा के लिए गाते हैं। 15 मिनट तक आरती आपने मंदिर में की, मंदिर में या कहीं भी जहां आपको अच्छा लगा वहां बैठकर आपने 15 मिनट तक वो आरती गाई, बाहर आए, और बाहर आने पर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपके माता पिता कौन हैं, आपके माता पिता कौन हैं? तो आप कहते हैं वो जो मंदिर में बैठे हैं, कहते हैं उनको 15 मिनट बोलकर आए हैं, उनको कोई आधा घंटा भी लगाकर आया है, उनको याद करा के आए हैं, सामने खड़े होके उनको याद करा के आए हैं कि आप माता पिता आप याद रखो, क्योंकि आपको तो याद ही नहीं है। बाहर आते ही पिताजी मेरे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, या वहाँ इंजीनियर थे, या मेरी मम्मी ये थी, मेरे फादर वो उनको वही हम लोकल इस दुनियावी बायोडाटा वही सुनाने लग जाते हैं जिन्होंने सिर्फ इस शरीर को जन्म दिया, वो बताने लग गए हम। और अंदर जो बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो मात पिता, तुम मेरे शरण गहूं किसकी। तो वो जो बोल रहे थे वो क्या था फिर? ऐसे ही भगवान को खुश कर रहे थे या झूठ मूठ था? कुछ समझ नहीं आता, बड़ी कंफ्यूज सी लाइफ चल रही है, क्योंकि बड़ों ने सिखाया, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि उनको बोलना चाहिए, इसीलिए हम बोल देते हैं। और फिर जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, दुनिया में टेंशन परेशानियां बढ़ने लगती हैं, फिर भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं, तुमने क्यों ये कलयुग बना दिया, तुमने ऐसी गंदी दुनिया क्यों बनाई, है ना? गीत में भी बज रहा था कि तुमने जन्नत बनाने की मेहनत जो की, फिर ये जहन्नुम क्यों बन गया, है ना? इसको नरक बनाने की, जहन्नुम बनाने की जहमत क्यों की? तो जहमत या मेहनत भगवान ने नहीं की, और जन्नत वो उसने इतने अच्छे कर्म सिखाए जो आप आत्मा ही जन्नत में कन्वर्ट करते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। ये सब बातें आप यहाँ सीख रहे हैं, और बाहर पीछे बहुत सुंदर एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें भी आप देखते हैं। अब खास बात ये है कि जिसको हम मात पिता कहकर पूजते रहे, याद कराते रहे, गीत गाते रहे, तो क्यों नहीं हम उनको मात पिता कहते हैं? क्यों नहीं कहते उनको मात पिता? मानते क्यों नहीं है? तो ये सोचकर अपने आप से हम बात करेंगे कि हम जब भी बात करते हैं कि परमात्मा मात पिता है, तो उस परमात्मा मात पिता से कनेक्शन कहाँ लूज हो गया जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? अंतर देखिए, बाप ज्ञान का सागर और खुद दुनियावी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अज्ञानियों जैसी बातें करते रहते हैं। दुनियावी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हम समझते बहुत ज्ञानी हो गए हम, लेकिन जब जब हलचल या परेशानी आती है तो खुद को बहुत हलचल में, पैनिक अवस्था में पाते हैं, तो पता लगता है कि ज्ञान है नहीं, अज्ञानी है। क्योंकि जिसको ज्ञान होता है वो स्टेबल होता है, वो हिलता नहीं है। अब इसके बाद देखिए, जब हम भगवान को कहते हैं आप शांति के सागर हैं, तो हम क्या हैं? दिखती है सारा दिन मन में, घर में, व्यवहार में, मोहल्ले में, ऑफिस में शांति दिखाई देती है क्या? वो शांति का सागर, और खुद को देख देख के सोच रहे हैं हम तो अशांति के सागर हैं। अब इस तरह की अंतर जो महसूस होता है, दया का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, और हम हैं परेशान, अशांत, और इस तरह की आत्माएं जो माइक में, आरती में खुद बोलते हैं मैं मूरख खल कामी, पाप हरो देवा, खुद को खुद ही कह रहे होते हैं। अब ये आरती भगवान ने तो नहीं बनाई, उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम मूरख खल कामी हो, खुद ही खुद को बोल रहे हैं ना। परमात्मा क्या कहेगा अपने बच्चों को? भगवान तो ये कहेगा ना कि मैं शांति का सागर हूँ, तो तुम शांत आत्मा हो। मैं प्रेम का सागर हूँ, तो तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो। वो तो ये बात कहेगा। तो अब हम ये सोचकर देखें कि परमात्मा से बातें करने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आत्मा के टोटल संबंध परमात्मा के साथ हैं। वो गुणों का सागर है, और मैं आत्मा भी गुणवान था। जैसे जैसे गैप क्यों बढ़ गया कि आत्मा में गुण कम होते गए और इस अवस्था में आ गए कलयुग में, फिर से वैसा ही बनना ये राजयोग मेडिटेशन का काम है। अब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, इसको आप देखिए, एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ हमेशा कह देती थी कि बेटा देखो सामने चर्च है तो वहां जाके आप प्रेयर किया करो। अब भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप थोड़ा आधा बैठकर प्रेयर करते हो, हाथ जोड़कर करते हो या हाथ खोल कर करते हो, है ना। तो उसे परमात्मा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमात्मा के पास कोई शब्द कोई भाषा नहीं पहुंचती है। आप अरबी में, फारसी में, संस्कृत में, हिंदी में, जर्मन में, फ्रेंच में, किसी भी भाषा में भगवान को याद कीजिए, जिन भावनाओं से आप बात करेंगे उन भावनाओं में, उस वाइब्रेशन में जवाब भी आएगा। अपनी भाषा में बात करेंगे आपकी भाषा में उत्तर आएगा। परमात्मा को कोई भाषा नहीं आती है, वो आपको आपकी भावना और वाइब्रेशन में ही आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो इसीलिए नो नीड ऑफ फॉर्मेलिटी। आप हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, किसी भी भाषा में याद करें, हाथ बांध कर, हाथ खोल कर, कैसे भी याद करें, सुबह दोपहर शाम कभी भी करें, सारा दिन उससे बातें करें। तो इस तरह से उस बच्चे को जब माँ बोलती थी कि बेटा सामने चर्च है वहां जाया करो और वहां प्रेयर किया करो, दो बार बोला, चार बार बोला, छोटा सा बच्चा था 4 साल का, तो उसने सोचा मम्मा रोज बोलती, आज चला ही जाता हूँ, बस रोड पार करके ही तो जाना है सामने। तो वो चला गया, तो उसने देखा जो पादरी थे, फादर थे, प्रीस्ट, वो थोड़ा सा टांगे मोड़कर आधा खड़ा होकर और ऐसे हाथ बांधकर, ऐसे सिर झुकाकर कुछ बोल रहे हैं, होठ हिला रहे हैं, उनके होठ हिल रहे हैं। तो छोटे से बच्चे ने पास में बैठकर सेम एक्टिंग की, वैसे ही उसने पीछे घुटने से नीचे टांगे मोड़ी, आधा खड़ा हुआ, ऐसे किया, सिर झुकाया और वो होठ हिलाने लग गया, बड़बड़ाने लग गया, जैसे वो होठ हिला रहे थे वैसे हिलाने लग गया। अब ये करता रहा, तो अब छोटा सा बच्चा कोई पास में करेगा ऐसे, तो फादर का ध्यान गया, उन्होंने देखा। प्रीस्ट ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ। तो बच्चा कहता, मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ। अच्छा, फिर वो वैसे ही बोलता रहा। फिर प्रीस्ट ने पूछा कि तुम क्या प्रेयर कर रहे हो? बच्चा पूछता, आप क्या प्रेयर कर रहे हो? तो उन्होंने बता दिया, ओ गॉड सेव मी फ्रॉम सिंस, और ऐसे ऐसे जो भी इंग्लिश में उनके हिम्स या जो भी उनकी होती है प्रेयर, वो उन्होंने बोल के सुना दी। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भगवान मुझे पापों से बचाओ, मुझे गलत कर्म से बचाओ, तो ऐसे उसने अपनी प्रेयर बता दी। अब बच्चे से पूछा, बताओ आप क्या प्रेयर कर रहे हो? अब बच्चे ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगेन शुरू हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच। प्रीस्ट हंसने लग गए, फादर ने हंस के कहा, ये क्या प्रेयर होती है? अब जो उसने बताई थी वो भी इंग्लिश में तो बताई थी ना। तो बच्चा कहता कि फादर, आपकी प्रेयर में भी इंग्लिश के यही 26 लेटर्स हैं और मेरी प्रेयर में भी यही 26 लेटर्स हैं। आपने उसको जोड़ तोड़ के कुछ बना दिया, मैंने भगवान को ऐसे ही दे दी रॉ मटेरियल, अपनी पसंद की बना लेना, जो आपको अच्छी लगे वैसी प्रेयर बना लेना। तो ये भोलापन जिसमें आप दिल की बातें कर सके, वही भगवान को पसंद है, क्योंकि सिंपल बात है, वो शरीर, भाषा, देश ये सब नहीं जानते। जैसे आप आत्मा निराकार हैं, जो आपने कल भी सुना, वैसे ही परमात्मा भी निराकार, ज्योत स्वरूप, है ना, एक निरंकार, ओंकार, ये शब्द उनके लिए बोलते हैं, तो वो भी निराकार है, आप आत्मा भी निराकार हैं। तो आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीरों का पिता नहीं है। शरीर का पिता आपका अलग, मेरा अलग, आपके पिता का पिता अलग, उसके पिता अलग, शरीर के पिता अलग अलग हैं, हमारे धर्म पिता भी अलग अलग हैं, परम पिता एक ही है। तो परम पिता एक है, उनको हमने कितने तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम खुद ही उलझ कर रह गए। ये वैसे ही किया जैसे बचपन में हम सुनते थे ना, 5-6 ब्लाइंड थे, नेत्रहीन थे, जिनको आजकल दिव्यांग जन बोलते हैं, तो आंखों की रोशनी नहीं थी और उनके सामने एक बड़ा सा हाथी खड़ा कर दिया गया। अब उनको क्या पता हाथी कितना बड़ा होता है, जो बचपन से कुछ नहीं देखा उन्होंने पैदा होने से, कुछ रिलेटेड चीजें उन्होंने महसूस की हुई थी। अब जो नेत्रहीन है उनका देखना कैसा होता है टच करके, ये वैसा ही था। अब वो 5-6 लोग उसके आसपास खड़े हो गए, एक का हाथ गया, उन्होंने अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक टच करके कहा, एक बार अजगर देखा था, ये हाथी ना अजगर जैसा है। उसने क्या पकड़ लिया था, सूंड पकड़ ली थी, सूंड टच करके ऊपर से नीचे तक टच करके देखा कि अजगर जैसा है, बड़े सरपेंट जैसा। दूसरा कहता, नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है, पता नहीं किसको कह रहा है, एलिफेंट, ये एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट तो देखो ये खंबे जैसा है। उसने क्या किया, टांग पकड़ ली, अच्छी तरह टच करके देखा उसके टांग को, उसके लेग को, और कहा हाथी तो ये इसके पिलर जैसा ही होता है, खंबे जैसा होता है। तीसरा कहता, नहीं नहीं सब गलत बोल रहे हो, ये देखो हाथी तो नरम दीवार जैसा होता है, एक खुरदरी सी नरम सी दीवार है उस जैसा होता है, वो उसकी बॉडी को टच कर रहा था। चौथा कहता, नहीं नहीं ये सब गलत बता रहे हैं, ये देखो हाथी तो रस्सी जैसा है, उसने पूंछ पकड़ ली। और पांचवा कहता, ये आप सबको पता ही नहीं है, मैंने अच्छी तरह टच करके महसूस किया, ये हाथी तो हिलता भी है, ये पंखे जैसा होता है, कान पकड़ लिया, कान को हिला हिला के भी देखा। तो वो पांचों सूरदास नेत्रहीन सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे, उनसे पूछ के देखो वो क्या बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। कैसे, स्पर्श करके अनुभव करके सच बोल रहे थे, उनका स्पर्श करना ही उनका अनुभव था। अब वो ठीक बोल रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था, आंखें नहीं थी तो ये नहीं मालूम था कि सारे अंग मिलाकर हाथी बनता है और ये इतना विशाल होता है, वो एक एक अंग को हाथी समझे बैठे थे। अब अपने आप को देखें, डॉक्टर साहब आप ही मेरे लिए भगवान हैं। जिस डॉक्टर ने बहुत दया और प्रेम से पेशेंट की मदद की, उसकी सेवा की, काम किया, पैसा लिया या नहीं लिया और बचा लिया, तो भगवान जो होता है वो सेवियर होता है, भगवान बचाता है, इसीलिए डॉक्टर भगवान। माँ खूब पालना दे रही है, प्यार कर रही है, सींच रही है, तो पूरी डेवलपमेंट का ध्यान रख रही है, तो माँ ही भगवान। जितने देवी देवता हुए उनकी कहानियां हैं, इस तरह की कथाएं हैं, जिन्होंने बहुत विपरीत परिस्थिति में भी दुष्ट दलन जिनको बोलते हैं, असुरों का, दुष्टों का संहार किया, उनको ठीक किया और उन्होंने सत्य की नाव को उबार दिया, सत्य का साथ दिया और सत्य की विजय करा दी। तो जितने देवी देवताओं को देखा, तो भगवान वो है जो दुष्ट और कष्टों को दूर कर देता है, तो वो सभी भगवान हो गए, चाहे वो सब देवियां हुई वो सब भगवान हो गई। तो भगवान का एक एक गुण जिसमें दिखाई दिया, एक एक गुण, दया, प्रेम, करुणा, दुख हरना, सुख देना, तो उनको हमने सब उनको भगवान कह दिया, ऐसे सब आत्माओं को। लेकिन फिर भी आत्माएं महान आत्मा हो सकती हैं, धर्म आत्मा हो सकती हैं, पुण्य आत्मा हो सकती हैं, लेकिन कोई भी आत्मा परम आत्मा नहीं हो सकती। घर में बड़े भाई को आप कह सकते हैं बिल्कुल बाप जैसा है, बाप समान है, लेकिन पापा तो नहीं है ना, वो सारी संपत्ति नहीं देने वाला आपको, वो आपका हिस्सा ही आपको दे देगा, बहुत अच्छा है इसलिए, लेकिन आपका ही हिस्सा आपको देगा। लेकिन बाप है, प्रेम और करुणा का सागर है, आपने बहुत सेवा की है तो हो सकता है संपत्ति ज्यादा दे देवे, तो वो बाप नहीं हो सकता, बड़ा भाई बाप समान हो सकता है। ऐसे परमात्मा समान बहुत सी आत्माएं हुई हैं दुनिया में, जिन्होंने इस दुनिया में रोल प्ले किया, लेकिन वो परम आत्मा नहीं हो सकती। परम आत्मा कितने होते हैं फिर, कितने होते हैं परमात्मा, एक, सभी सहमत है इस बात से कि परमात्मा एक होता है? हम सब बोलते हैं परमात्मा एक होता है, हम भी बोलते थे, फिर कहते थे बाकी सब भगवान के रूप हैं, और भगवान के रूपों को हम कुछ भी कह देते हैं। लाइक आपके पड़ोस में जो बहन बैठी है, आपके पड़ोस में जो भाई बैठा है, वो भी भगवान का रूप है ना, है ना? और कितना बुरा लगता है जब वो रात को खर्राटे मारता है और आपको नींद नहीं आती है, जब वो कुछ और कह दे तो उसकी बुराई भी करते हैं, उसकी निंदा भी करते हैं। तो भगवान का रूप है, भगवान के रूप की निंदा भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, उसको तंग भी करते हैं, करते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब हम इस पे भी सहमत नहीं है कि सब भगवान के रूप हैं। हम उनकी आरती थोड़ी उतारते हैं, उनकी छोटी सी गलत बात हो, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो, झट उनकी बुराई कर देते हैं। और हमें बुराई करने की प्रैक्टिस बड़े लंबे टाइम से है, जैसे ही थोड़ा होश संभाला था, समझ में आ गया, तब से बुराई करने की प्रैक्टिस पक्की कर ली थी हमने। जो बात अच्छी नहीं लगे झट से दो चार के सामने बता दो, ऐसे करते हैं। एक बार तो बहुत अच्छी शादी फंक्शन में गए दो भाई, आदत थी जैसे सबको होती है, अब इतना आलीशान था वहां भोजन का सिस्टम, इतना आलीशान सजावट, पंडाल मंडप बहुत आलीशान, डीजे सिस्टम, म्यूजिक डांस वगैरह, खाने का सिस्टम, सब कुछ A1 आलीशान था। अब बेचारों को कहीं भी नुक्स निकालने का, अवगुण देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्या चीज में नुक्स निकालें, खाना हजम ही नहीं हो रहा था। बहुत बढ़िया खाना खाया लेकिन मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ जो देखने आए थे वो दिख नहीं रहा है, जो नेगेटिव देखने आए थे वो दिखाई नहीं दे रहा, तो नुक्स निकालने का मौका नहीं मिला कहीं चीज में। तो कहते मेरे को पता है सब ये धन कहाँ से आया है, बड़ी इन्होंने ठाट बाट कर रखी है ना, ये धन कहाँ से आया, कैसे कमाया, मुझे सब पता है। मतलब कुछ तो बोलना ही है ना, हर अच्छी से अच्छी चीज को अच्छा ही कह दें तो ये भगवान तो कर सकता है, इंसान तो नहीं कर पा रहा। तो इसलिए वो जो प्रैक्टिस हो गई है, ये चीजें हमें परमात्मा से दूर करती हैं। अब हम यहाँ प्रैक्टिस चेंज करने आए हैं, सबके सब चिंतित रहने की प्रैक्टिस बचपन से हो गई ना, जब से स्कूल के एग्जाम का टेंशन दिलाया था मम्मी ने, तब से हमें टेंशन लेने की आदत हो गई है, चिंतित रहने की आदत, डिस्टर्ब होना डिस्टर्ब करना, परेशान होना परेशान करना, तो ऐसी बहुत सी आदतें बहुत सी प्रैक्टिस पक्की हो गई है। अब उस प्रैक्टिस को चेंज करने की जरूरत है, और उसमें मदद करेगा परमात्मा से मिलन, परमात्मा से दोस्ती। और ये दोस्ती इसलिए जरूरी है कि जब आप जाएंगे यहाँ से तो आप कह सकते हैं कि एक और मैंने बहुत अच्छा साथी और संबंधी बना लिया है, बहुत अच्छा दोस्त बना लिया है, जो मेरे दिल की बात सुनता है, दिल की बातें हम उसके साथ कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि जब हम परमात्मा को कह रहे हैं कि एक है, हम सभी इस बात से सहमत हैं, परमात्मा ने अपना कार्य अनेक आत्माओं से करवाया, महात्मा बुद्ध से करवाया, महावीर जैन हुए और गुरु नानक देव जी हुए, फिर जितने अवतार हुए, हम अवतार कहते हैं उनको, तो कितने अवतार हुए, 24 अवतार कहते हैं, तो ये सब हुए, इनसे अपना कार्य करवाया ऐसा मानते हैं। लेकिन परमात्मा एक, अपना कार्य एक विशेष है, वो है आत्माओं को जागृत करने का, शिक्षा देने का। हमने जितने भी धर्म स्थापक संत महात्मा देवी देवता देखे तो हमने ये देखा कि उन्होंने जो सुनाया कुछ लोगों को समझ में आया, उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ये माता के भक्त हो गए, ये राम जी के भक्त हो गए, ये कृष्ण जी के हो गए, और ये सिख हो गए, ये जैनी हो गए, ये बोधी हो गए, तो एक अलग अलग ग्रुप्स बनते गए और वो उनके पीछे लगते गए। अगर परमात्मा ज्ञान देता अति धर्म ग्लानी के समय एक बार आता है, तो अगर वो ज्ञान देते तो सबको एक जैसा बनाते, एक जैसा ज्ञान, भले अपने अपने अनुसार बनते तो अलग अलग कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, लेकिन वो ज्ञान एक जैसा देते, अलग अलग मत के रूप में नहीं देते, अलग अलग पंथ अलग अलग मत अलग अलग धर्म के रूप में नहीं देते, तो एक जैसा ही ज्ञान देते। ये जो महान आत्माएं हुई हैं, उनमें जो अपना ओज, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति थी, उन्होंने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दिया और सबने उनको प्यार से, जिसको समझ में आया उसने उनको फॉलो कर लिया, तो वो वैसा वैसा कहलाने लगे। ये सिख हैं, ये बोधी हैं, ये जैनी हैं, ये देवी के भक्त हैं, ये फला के भक्त हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, जिनको हम बहुत सारी बातें कहते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं, संप्रदाय बोलते हैं। भगवान अनेक चीजें नहीं बनाता, क्योंकि वो एक है, अनेक वो नहीं बनाता। अनेक मत हमारी अपनी अपनी है सभी की, तो वो एक है, तो सभी आत्माओं का वो एक पिता है, तो हर जगह उस एक को एक के रूप में कैसे स्वीकार किया गया, ये देखिए। श्री राम जी ने सेतु बांधने से पहले, सेतु बनाने से पहले उनकी पूजा की थी, क्या बोलते हैं उसे, देखा आपने, कईयों ने साउथ में देखा होगा, रामेश्वरम, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरम, इस तरह उनको याद करते हैं। राम जी ने जिनकी उपासना की, राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वरम है, कृष्ण जी के जो ईश्वर हैं वो गोपेश्वरम है, इस तरह याद किया। इसी तरह क्राइस्ट ने खुद को भगवान नहीं कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, परमात्मा का अलग से परिचय दिया, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, अलग से परिचय दिया। जापान में बोधियों का एक अच्छा ग्रुप है, वो क्या करते हैं, एक सुंदर से 3 फुट के स्टैंड पर एक लाल रंग का पत्थर रखते हैं, जोत जैसा, तो उस पर वो ध्यान एकाग्र करते हैं, उसको बोलते हैं चिंकोन सेकी। चिंकोन सेकी माना पीस गिवर, शांति दाता, इस फॉर्म में उनको याद करते हैं। तो भगवान को शांति दाता भी कहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई अल्लाह को नूर कहते हैं, नूर माना रोशनी, रोशनी, रोशनी जैसा आकार, ज्योत जैसा आकार, निराकार, इस फॉर्म में बहुतों ने माना। जेहोवा कहा उनको, लाइट का साक्षात्कार हुआ हजरत मोसीज को, तो उन्होंने उनको जेहोवा कहा। इसी तरह से अलग अलग नाम दिए गए, बहुत बड़ा एक ज्योत जैसा बर्फ का शिवलिंग बनता है तो उसको अमरनाथ कहा गया, तो काशी में विश्वनाथ, कश्मीर में अमरनाथ, गुजरात में सोमनाथ, अमृत पिलाने वाला, अलग अलग नाम रखकर एक ज्योत को, निराकार को याद किया गया। तो एक है तो एक जैसा होना चाहिए और एक ही एड्रेस होना चाहिए उससे मिलने का, इस तरह से तो है नहीं, किसी भी रास्ते से जाओ तो भगवान मिल जाएगा। कई तो बहुत मजेदार लोग होते हैं, एक भाई ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया मेडिटेशन सीखने से पहले, यही माउंट आबू में भी आए थे, उससे पहले वो गए कैलाश मानसरोवर और वहां उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव किया मेडिटेशन का, लेकिन किया कैसे, बहुत ऊपर तक अपनी गाड़ी लेकर गए, बढ़िया गाड़ी थी और गाड़ी में शराब की पेटी, बड़ी बड़ी बोतलें, और वो और उनके दो दोस्त, वो कहते वहां ड्रिंक की हमने और ड्रिंक करके मेडिटेशन किया, क्या आनंद आया आप पूछ नहीं सकते, कहते क्या बेहतरीन अनुभव हुए। तो वो कैलाश मानसरोवर जाने की जरूरत नहीं थी, वो तो घर में बैठ के भी पी के पी लेते तो भी हो जाते अनुभव, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी उसके लिए, क्योंकि वो नशा इस तरह का अंदर पैदा करता है उन्माद और ऐसी अवस्था आ जाती है। लेकिन ये जो अवस्था है जिसे कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो अलग चीज है, जो उसके प्यार का नशा है, जो मीराबाई को हुआ और उसको जहर भी फील नहीं हुआ, जहर अंदर गया लेकिन अंदर अपना इतना रस बना हुआ है, इतना प्रेम बना हुआ है कि वो जहर भी अंदर जाके असर नहीं कर रहा, तो वो होती है खुमारी, वो होता है रस, उसमें नेगेटिव चीजें फील नहीं होती है। इसीलिए आशिकों को, प्यार करने वालों को मार पड़ गई, डांट पड़ गई, बेइज्जती कर दी, प्रताड़ित किया गया, उनको महसूस ही नहीं होता वो, तो ऐसे सोचो ये आम दुनियावी प्यार करने वालों को, भगवान को प्यार करने वाले, भगवान पर आशिक, भगवान पर कुर्बान होने वाले, उनको कैसे महसूस हो सकता है, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, ये कर दिया, दुख दे दिया, उनको कैसे महसूस हो सकता है, वो तो गोपियां होती हैं। तो वो वाली स्थिति परमात्मा चाहते हैं कि मुझ आत्मा के साथ तुम आत्माएं मेरे साथ बनाओ, तो बाकी सब दुख चिंताएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी। अब इस बात को समझकर हम छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे कि मैं यहाँ निराकार आत्मा हूँ, वो भी निराकार ज्योत स्वरूप है। हर धर्म जाति संप्रदाय ने उसको ज्योत स्वरूप में ही स्वीकार किया है। एक मिनट सीधा होकर बैठेंगे, फिर इससे अगला विषय कि हम क्यों सभी को भगवान नहीं कह सकते वो बाद में करेंगे। दो मिनट बाद, दो मिनट बिल्कुल पांव जमीन पर या चौकड़ी लगाकर बैठे या पांव जमीन पर लगा ले, दोनों पांव फील करें। मस्तक में चमकता हुआ हीरा, मैं शांत आत्मा हूं, क्योंकि शांति के सागर की संतान हूं। मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूं, भगवान प्यार का सागर है और आप उसकी संतान प्रेम से भरपूर हैं। फील करें आपके ऊपर वह परम ज्योति चमक रहे हैं। उनकी शांति और पवित्रता की किरणें आप आत्मा को प्रेम और शांति से भरपूर कर रही हैं। जहां आप बैठे हैं आपके चारों तरफ शांति का घेरा बना हुआ है। आप प्रकाश के ऑरा में बैठे हैं। ये भगवान की छत्र छाया है। ओम शांति। और इसी फीलिंग में आप दिन में कई बार रह सकते हैं कि आप लाइट के घेरे में बैठे हैं, प्रकाश के ऑरा में बैठे हैं और भगवान मेरी छत्र छाया बन गए हैं। अब एक और खास बात कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि भगवान जब दुनिया में है तो दुख क्यों है, और हम ये बात कहते भी आए। लेकिन गीता में एक महावाक्य जो हमने पढ़ा और हमें बहुत अच्छा लगा कि मैं अति धर्म ग्लानी के समय आता हूँ। उससे पहले अनेक मठ पंथ स्थापक आए, अनेक मत और धर्म स्थापक आए और उन्होंने अपने लेवल पर बहुत अच्छी बातें बताई, जिससे आत्माओं में फिर से जो गिर रहे थे, आत्माओं का जो रोल खराब हो गया था, फिर से जागृति आई और उन्होंने अच्छा बनने का प्रयास किया, अच्छे कर्म करने का प्रयास किया। फिर जब देखा कि बहुत सारे अलग अलग मठ पंथ बन गए और उसके बावजूद भी गिरावट आ रही है, तो ये बात आती है कि अति धर्म ग्लानी के समय असुरों का संहार कर साधुओं का उद्धार करने के लिए, अधर्म का विनाश कर सत धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो मैं आता हूँ इट मीन्स कहीं और से आता हूँ, नहीं तो कह देता मैं रहता हूँ यहाँ, और वो रहता तो दुनिया इतनी खराब ही क्यों होती। तो वो आता है इट मीन्स उसको याद करने के लिए आपके पास एक स्थान है, जिनको सिख लोग बोलते हैं सचखंड, सचखंड वसे निरंकार, कि वो निरंकार निराकार उस सचखंड में परम धाम में, सच माना अविनाशी, अविनाशी खंड में रहते हैं, वहां से आके दुनिया का कल्याण करते हैं। इतनी देर आत्मा अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, उनको स्वतंत्रता दे रखी है कि अच्छा सोचें और अच्छा कर्म करें। जब सोच बिगड़ जाती है तो दूसरों से सीखने चल पड़ते हैं कि हमें सोचना सिखाइए, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, दूसरों से सीखते हैं जो थोड़ा सा बेटर है। ये वैसा ही है जैसे बैटरी चार्ज करने के लिए आपने डायरेक्ट सोर्स से नहीं लगाया, प्लग में बिजली से नहीं लगाया, पावर बैंक से जोड़ रखा है। अब पावर बैंक तो खुद चार्ज होके आया है, पावर बैंक ने अपने आप को चार्ज किया, फिर वो आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो कितनी देर उसमें चार्जिंग रहेगी? थोड़ी देर, फिर उसको चार्ज होना पड़ेगा। तो जितने भी संत महात्मा गुरु हम जैसे कोई भी हुए हैं, तो वो एक दूसरे को अपनी शक्ति अनुसार चार्ज करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, कि थोड़ी सी अच्छी बातें बताई, थोड़ी एनर्जी दी, थोड़े पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए, शुभकामनाएं दी, तो उतनी ही जितनी मुझ में हिम्मत है मैं उतना ही दे सकती हूँ। परमात्मा क्या है? सागर है, सागर सोर्स है, निरंतर देता है, इसीलिए उनसे जुड़ने की जरूरत है। तो हमें उन जैसा उनसे जुड़ना थोड़ा मुश्किल काम लगा कि राजा तक अप्रोच होना मुश्किल है, राजा तक जाना तो राजकुमार से दोस्ती कर लेते हैं, राजकुमार से मिल लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने आपस में एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर दिया, भाई तुमसे थोड़ी शक्ति मिल जाए, तुमसे थोड़ी शक्ति मिल जाए, इस तरह से हम एक दूसरे से जुड़ने लग गए। और इसी तरह थोड़ी सी अच्छी आत्माओं से जुड़ने लग गए। अब आज टेंशन में है तो किसी मल्टी मिलियनर के पास, कभी आप कोई बहुत बड़े अभिनेता राजनेता के पास नहीं जाते हैं, टेंशन और परेशानी है तो गुरुजी के पास जाते हैं, किसी अच्छे मेंटर के पास, किसी अच्छे देवी देवता के मंदिर में या ऐसी जगह जाते हैं जो अपने से विचारों में श्रेष्ठ है, उनके पास जाते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने देवी देवता, संत महात्मा, गुरु आचार्य, उनकी भी वैल्यू बन गई, क्योंकि वो भी दे रहे हैं। परमात्मा तब आते हैं जब वो सारे पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो गए, लगभग सब डिस्चार्ज हो गए, तो परमात्मा को अति धर्म ग्लानी के समय खुद आकर ये कार्य करना पड़ता है, और वो है सुख देने का कार्य। उनको बोलते हैं सुख करता दुख हरता। तो आज के बाद कभी भी दुख आए, परेशानी आए, तो भगवान को दोष तो नहीं देंगे ना, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान तूने किया, जो भगवान की मर्जी है ना, मेरा बच्चा छीन लिया, पति छीन लिया, पैसे में नुकसान हो गया, जो भगवान की मर्जी, ऐसे कह के दिल पे पत्थर रख के इस तरह सब्र करते हैं। ये काम भगवान का नहीं है। आपने शिवानी बहन के लेक्चर में सुना होगा ना कि आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, आपने जो किया वही लौट कर आता है, जो दिया वही लौट कर आता है। तो इसीलिए इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, भगवान का एक ही रोल है, शांति देना, सुख देना, आत्मा को पवित्र बनाना, परमात्मा का एक ही रोल है। तो इसीलिए परमात्मा को ये काम करना है। तो वो करने के लिए परमात्मा पिता ने हमें कुछ चीजें सिखाई, और वो सिखाई जो है वो आपने एक बहुत अच्छा योगी का चित्र देखा होगा, तो उस योगी में वो सारे लक्षण दिखाई देते हैं। एक तरफ हम निराकार शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनको कहते हैं शिव निराकार, शिव माना कल्याणकारी, वो निराकार ज्योत है, नूर है, अल्लाह है, वाहे गुरु है, लेकिन निराकार ज्योत स्वरूप है, उनको हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उनको भोलानाथ कहते हैं। एक तरफ हम शंकर जी की मूर्ति रखते हैं, उनको भी भोलानाथ कहते हैं, उनको भी हम कह रहे हैं कि ये भोलानाथ है, शिव शंकर भर दे झोली, ऐसा बोलते हैं। महेश्वरा बोलते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उनको महादेव महेश्वरा कहते हैं। आपने और देवी देवता भी देखे होंगे, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण, बहुत खूबसूरत कपड़े, बहुत सुंदर मुकुट, लेकिन उनको हम देव या देवता बोलते हैं, देवी देवता। और जिनके पास सुंदर कपड़े भी नहीं है, मुकुट भी नहीं है, सुंदर हार भी नहीं है, उनको हम महादेव बोलते हैं। कुछ तो खास बात होगी ना, होगी ना कुछ खास बात। वो सभी देवी देवता भी गृहस्थी दिखाए गए, पत्नी बच्चे सब हैं, और महादेव के पास भी पत्नी बच्चे हैं ना, लेकिन वो घर गृहस्थ में रहते हुए महायोगी दिखाए गए, योगी और महादेव। वैसे देखा जाए सचमुच में नीले रंग का शरीर हो, नीला रंग का शरीर हो, ऐसे जटाएं बंधी हो और उसमें से गंगा की धार निकल रही हो, ऐसे मस्तक पर चंद्रमा हो, ऐसा व्यक्ति दुनिया में तो कोई होता नहीं है। जिनके पास का ना खूबसूरत कपड़े भी नहीं है, मुकुट भी नहीं है, उनको महादेव कह रहे हैं। तो ये परमात्मा पिता ने एक बहुत सुंदर योगी का मॉडल हमारे सामने रखा है। वो सब कुछ सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। उन प्रतीक का क्या मतलब है ये परमात्मा पिता ने समझाया कि जिनको हम भोला नाथ कह रहे हैं वो भोले इसलिए हैं कि सब कुछ, सब ज्ञान होते हुए भी कहीं दुनिया, चीजें, हलचल, परेशानियों में इंडल्ज नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए वो भोला नाथ कहलाते हैं। दूसरी चीज, जो उनके अलंकार दिखाए गए, ऐसा व्यक्ति कोई होता नहीं है। सबको पता है कि गंगा, गंगोत्री उसका उद्गम स्थान है, जहां से उसका ओरिजिन होता है, सहस्त्र धारा कहते हैं, बहुत बर्फ पिघलती है, छोटी छोटी बारीक बारीक धाराएं निकलती हैं, सहस्त्र माना हजारों धाराएं, और फिर वो सब इकट्ठी होके मोटी धारा बनती है, निरंतर बर्फ पिघलती रहती है और निरंतर वो गंगा नदी में मिलती रहती है। हमेशा ठंडा पानी, मई के महीने में भी ठंडा पानी मिलता है वहां। तो इसीलिए गंगा को आज भी पवित्र माना जाता है। तो पवित्रता की निशानी उनके बिल्कुल शीर्ष भाग पर जटाओं में गंगा दिखाई गई है। तो पवित्रता का उद्गम हम आत्मा का सबसे पहला शीर्ष भाग से पैदा हुआ गुण है कि बहुत सबसे पहला गुण है, हम आत्मा पवित्र हैं तो भगवान को प्यारे हैं, और भगवान भी हमको सबसे पहले पवित्र ही बनाने आता है। तो इसलिए पवित्रता की पराकाष्ठा, पवित्रता की चरम सीमा गंगा जटाओं में दिखाई गई है। वैसे जटाओं में होती नहीं है, वो सबको पता है, सबने प्रयोग देखा है, सबने अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है कि पहाड़ों से ही गंगा नदी निकलती है और बर्फ पिघल के गंगा नदी बनती है, और बहुत साफ, अच्छा, शुद्ध पानी आज तक माना जाता है। पवित्रता की निशानी कैसे आई? राजयोग से। शंकर जी को, महादेव को हमेशा योगी मुद्रा में दिखाया गया है। परिवार गृहस्थी होते हुए, उसमें रास करते हुए, दुखी होते हुए, किसी के पीछे दुखी हुए, कहीं रास कर रहे हैं, कहीं खुश हैं, ऐसा नहीं दिखाया गया, इन्वॉल्व हुआ नहीं दिखाया गया उनको। पहाड़ों पर, पर्वत पर योगी रूप में दिखाया गया है। तो इसीलिए राजयोग से हमारी पवित्रता बढ़ती है। दूसरी बात, माथे पर चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज की निशानी है? चांदनी, शीतलता, रोशनी, इसकी निशानी है। चंद्रमा शीतलता की निशानी है। अगर आज से महादेव की तरह मस्तक पर चंद्रमा लगाकर रखेंगे तो हमारी मन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। कोशिश करना कि उसी गृहस्थी में रहने वाला मैं महादेव बन सकता हूँ। भगवान ने जो राजयोग सिखाया उससे महादेव ही बनते हैं। कैसी भी दुनिया है, उसी जंगल में, उसी दुनिया में रहते हुए इतनी शीतलता कि हर कर्म करते हुए नॉन रिएक्टिव। रिएक्ट करना सबसे आसान काम है। आपने देखा नॉन रिएक्टिव कछुआ 150-200 साल जीता है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कुत्ता, डॉग, मुश्किल से 15 साल, और वो उसे 10 गुना ज्यादा उम्र लेता है पछुआ, नॉन रिएक्टिव, जो चल रहा है सब ठीक है, जहाँ देखा शत्रु पावरफुल है अंग सिकोड़ के बैठ जाता है। कई लोग कहेंगे कछुए की तरह थोड़ी जिंदगी जी जाती है, तो आप सोचो कुत्ते की तरह भी नहीं जी जा सकती, जी सकते हैं क्या? बिना ही बात के जो स्कूटर जा रहा है, जो बाइक जा रहा है, जो गाड़ी जा रही है, हर एक के पीछे भौंकना है उसको, ना उसकी वहां तक पहुंच है, ना वो उनका कुछ बिगाड़ सकता है, बस रिएक्ट करना है, बोलना है। ऐसे दुनिया में लोग देखे हैं ना, कुछ हाथ पल्ले नहीं है, सुधार कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ बम्बारमेंट करनी होती है, सिर्फ रिएक्ट करना होता है, तो वो उसकी निशानी कुत्ता दिखाया गया। तो इसीलिए शांत शीतल मन में टेंशन के बिना अच्छी प्लानिंग होती है, अच्छी प्लानिंग, अच्छे आइडिया, अच्छी रेमेडीज, सब कुछ अच्छा उपाय शांत और शीतल मन में और बुद्धि में आता है, ना कि रिएक्टिव माइंड में। तो इसीलिए यहाँ बार बार आपको सिखाया जा रहा है कि स्ट्रेस को छोड़ देना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि आपका शांत मन अच्छे आइडियाज की खान है, और शैतानी मन तो सिर्फ हलचल और परेशानियां ही पैदा करता है। तो इसीलिए अपने मस्तक पर अगर चंद्रमा आज से लगा कर रखेंगे तो इसको आइस फैक्ट्री की तरह याद रखेंगे, या आइस फैक्ट्री, नॉन रिएक्टिव। घर में जाके अगर हो सके तो लिख देना, मिरर पे लिख देना, रसोई में लिख देना, बाथरूम में लिख देना, अपने बेडरूम में, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आपको खुद लगेगा एक पूरा दिन भी अगर नो रिएक्शन में बीत गया, नॉन रिएक्टिव होके आपने बिताया, तो इतना अच्छा दिन होगा, आपका दिल करेगा कि अगला दिन भी वैसा होना चाहिए। कई मौन रखते हैं एक दिन दो दिन, वो उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि जब कुछ कहना ही नहीं, आज मैंने बोलना ही नहीं, जब कुछ कहना ही नहीं, तो बिना टोके बिना बच्चों को कुछ कहे बड़ा अच्छा दिन बीता जी आज हमारा। तो उसके बाद उस दिन से बच्चे भी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, ध्यान रखते हैं कि इनको रिएक्शन का मौका दे ही ना, वो भी ध्यान रखते हैं। तो ऐसे अटेंशन दे, माथे में चंद्रमा, जटाओं में गंगा, और उसके बाद गले में सांप। सभी देवी देवताओं के पास गले में सुंदर सुंदर हार है, लेकिन यहाँ गले में सांप जो दिखाए गए, ये इस चीज की निशानी है कि इसी दुनिया में रहते हुए महादेव बनना है। चारों तरफ सांप जैसे लोग हैं, है ना, टेंशन देने वाले, काटने वाले, डसने वाले, ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, सब तरफ हैं ऐसे लोग। वहां होते हुए भी, वो सब सांप जैसे लोग आसपास लिपटे होते हुए भी, आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा वही बढ़ाएंगे। खूब रोशनी है बाहर, धूप में बल्ब की क्या वैल्यू है, अंधेरे में बल्ब की वैल्यू है ना। तो इसी तरह से जहां नेगेटिव है, जहां परेशानियां हैं, वहां शांत धैर्यवत मन बुद्धि वैल्यूएबल है। और जहां ऑलरेडी, जहां पहले से ही सब शांत है, सब अच्छे हैं, यहाँ आप भी अच्छे हैं, तो क्या खास बात है। यहाँ एक भाई साहब ऊपर ज्ञान सरोवर में एक प्रोग्राम में आए और कहते 4 दिन हो गए मेरा गुस्सा बिल्कुल छूट गया। लिफ्ट में जा रहे थे तो उस लिफ्ट भाई, लिफ्ट चलाने वाले सेवाधारी भाई को कहा 4 दिन मेरा गुस्सा छूट ही गया है, 4 दिन में यहाँ तो इतना अच्छा लग रहा है। वो लिफ्ट वाले भाई ने कहा, वो दिखने में लिफ्ट बॉय है लेकिन वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे जो सेवा कर रहे थे, पुराने यहाँ क्लास करने वाले। उन्होंने कहा भाई साहब गुस्सा छूटा नहीं है, गुस्सा करने का मौका नहीं मिला है। किस पर गुस्सा करेंगे आप? क्योंकि सब आपका कहना मान रहे हैं, सब आपकी खातिरदारी कर रहे हैं, आव भगत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, आराम से टेबल चेयर पर बिठा के साफ सुथरे कमरे मिले हुए हैं रहने के लिए, आने जाने को आपको अच्छी जगह और गाड़ियां भी मिली हुई हैं, तो गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिला। तो किस पर करेंगे? ये तो तब पता चलेगा जब, बाकी आपको पता है इसीलिए ये तब महसूस होगा कि गुस्सा छूटा है कि नहीं। इसीलिए अच्छी जगह पर अच्छे हैं तो कोई खास बात नहीं है। महादेव की महिमा है, गले में सांप लिपटे हुए हैं तो आसपास इतने नेगेटिव लोग हैं, वही आपकी शोभा बढ़ा रहे, वही आपको महादेव बना रहे हैं। आज इतनी बड़ी रामायण बनी, अगर दशरथ जी ने राम जी को राज्य दे दिया होता और वो राज कर रहे होते, दो लाइन में रामायण खत्म ना। दशरथ जी ने राज दे दिया, राम जी ने राज्य किया, बात खत्म हो गई। इतनी बड़ी रामायण किसके कारण बनी? सांपों के कारण। मंथरा, कैकेयी और कितने, वो जो मारीच और शूर्पणखा और रावण, है ना, इन सब के कारण इतनी बड़ी रामायण बनी। तो इसलिए ये लोग, ऐसी आत्माएं, ऐसे नेगेटिव पर्सनैलिटी होना जरूरी है, तभी तो आपका पता चलेगा आप कितने शांत हैं, कितने धैर्यवान हैं, आप कितने अच्छे हैं। अच्छाई दिखाने का मौका तो बुरे लोगों के सामने या जिनको जरूरत है उनके सामने ही तो मौका मिलेगा ना। सतयुग में सारे अमीर होंगे, सब संपन्न, वहां कोई किसी को दान करेगा ही नहीं, यहाँ दान करने की वैल्यू होती है ना। तो इसीलिए गले में सांप नेगेटिव होते हुए आपके आसपास, तो भी आप पॉजिटिव हैं, शांत हैं, तो भी आप पवित्र हैं और माथे में चंद्रमा चमक रहा है, तो उसकी वैल्यू है। एक और चीज, महादेव जी के पास एक त्रिशूल दिखाया हुआ है। त्रिशूल का मतलब है उसमें तीन शूल हैं। वो आपकी कर्म सिद्धांत को क्लियर करता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये तीनों शूल हमें बिल्कुल सब बुराइयों पे, सब तरह के दुखों पे विजयी बनना सिखाते हैं। जो आपने पास्ट में किया उसका रिजल्ट अब आप पा रहे हैं। सभी को देखो, अच्छा घर मिला है, अच्छी शक्ल सूरत मिली, अच्छा स्वास्थ्य मिला हुआ है, अच्छे बीवी बच्चे मिले हुए हैं, अच्छे शहरों से आप आए हैं। तो ये सब कुछ आपको किसके कारण मिला है? आपके अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। अगर किसी को कोई शिकायत है कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं मिली, तो वो भी उसके अपने कर्मों के कारण है। तो पास्ट में जो किया, जो दिया, वो प्रेजेंट में लौट कर आ गया आपके पास। और अब जो कर रहे हैं, अच्छे घर में जन्म इसलिए मिला है ताकि और अच्छा करने की फैसिलिटी मिले आपको, है ना। और अच्छा पढ़ाई करें, और अच्छा दान पुण्य करें, और अच्छा सोचें, और अच्छे कर्म करें। अगर झुग्गी में पैदा हुए होते तो बस अपना पेट भरने तक की सोचते, अच्छे कर्म करने तक की तो सोच ही ना पाते। तो इसीलिए ये अच्छे कर्म करके कारण, जो पास्ट के कारण प्रेजेंट अच्छा मिला, प्रेजेंट में जितना अच्छा अच्छा करते जाएंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये त्रिशूल अगर याद रहे तो प्रेजेंट में आप निरंतर अच्छा सोचने और अच्छा कर्म करने का ही ख्याल रखेंगे, क्योंकि दिया हुआ वापिस आएगा, अब का किया हुआ भविष्य में मिलने वाला है। नहीं तो स्वस्थ माता पिता और बच्चा मेंटली रिटार्डेड, है ना, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं जिनको, मेंटली ठीक नहीं है, स्वस्थ माता पिता, बच्चा पैदा होते हॉस्पिटल में और एक साल तक हॉस्पिटल में रह के चला गया, शरीर छोड़ गई आत्मा, ऐसा क्यों? बहुत सारे प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि हमें जो किया था उसका ज्ञान नहीं है। तो अगर ये समझ जाए कि मेरे ही किए का रिजल्ट आ रहा है तो टेंशन दूर हो जाएगी। तो त्रिशूल हाथ में रखेंगे तो टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, किसी बात में प्रश्न नहीं उठेगा। तो प्रश्नों को काटने वाला, टेंशन को दूर करने वाला त्रिशूल आपके हाथ में है। एक तीसरा नेत्र दिखाते हैं महादेव के पास। तीसरे नेत्र की विशेषता, कहते जब वो खोलते थे एकदम ज्ञान आना, तीसरा नेत्र खुलना है। तो तीसरा नेत्र खुला तो विनाश हो गया। वो विनाश या प्रलय सचमुच में ऐसे नहीं होने वाली है। आपका तीसरा नेत्र खुलेगा, आत्मा का ज्ञान क्लियर होगा, अंदर की बुराइयां, परेशानियां, टेंशन, विकार, व्यसन, इनका नाश हो जाएगा। ये पता है ना सभी को, ये ज्ञान तो है ना, कि जैसे आपका मन बुद्धि जागृत रहता है तो विकार बुराइयां टच नहीं करते आपको, एक ऑरा बना रहता है आपके चारों तरफ। नहीं तो आप खुद देखिए कि इसी तरह अज्ञानता में, टेंशन में, परेशानियों में एक पीरियड बीता था, लगभग एक साल का कोरोना पीरियड, कोविड पीरियड, कितने बूढ़े बूढ़े सब जीवित, बहुत सारे 90 साल के हैं आज, वो 85 इयर्स के थे, 80 इयर्स के थे, सब ठीक ठाक, और कितने जवान चले गए। न्यूज देखते थे और न्यूज में लगातार उसको कोविड हो गया, उसको हो गया, हॉस्पिटल में ये, हॉस्पिटल में वो, इतने मर गए, इतने ये हो गए, और शाम तक उसको भी कोरोना हो जाता था, क्योंकि लगातार उसका ऑरा सेंसिटिव हो जाता था और लगातार वो नेगेटिव 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 को ग्रास्प कर रहा है, अपने में रिसीव कर रहा है, और रिसीव करते करते ऑक्सीजन का लेवल डाउन चला जाता था और बीमार हो जाते थे। हॉस्पिटल में गए तो वहां सब बीमार ही बीमार दिख रहे हैं, और लेवल डाउन हो गया, पॉजिटिविटी का, अंदर से खुशी का, ऊर्जा का लेवल डाउन हो गया, तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन, और वो चले गए। अधिकतर लोग हॉस्पिटल में जो एडमिट हो गए वो ज्यादातर चले ही गए, शरीर छोड़ गई आत्माएं, और जो एडमिट नहीं हुए, पॉजिटिव रहे, ठीक रहे, वो वैसे हुए जैसे जुकाम बुखार ठीक हो जाता है वैसे हो जाता था उनका। तो कितने हैं सब ठीक हैं यहाँ। तो अब आप सोचिए कि ये हमारा सोचना, हमारे दो कीमती अंग हैं, हार्ट एंड ब्रेन, शरीर के ऑर्गन्स हैं, तो हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव सोचना उन प्रीशियस ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, दिल को, हृदय को और मस्तिष्क को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपका नेगेटिव सोचना या पॉजिटिव सोचना। तो इसलिए ये याद रखना है, तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला तो सब कुछ ठीक हो गया, तो विनाश हुआ विकारों का, ये उनकी विशेषता दिखाई गई। फिर महादेव जी को सारे जंगल में, कैलाश पर्वत पर जंगल में एकदम स्थिर योगी मुद्रा में दिखाया गया। इसका एक तो बड़ा अच्छा इसमें रहस्य ये है कि जो खुद योगी हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसी और की कर रहे हैं, वो खुद परमात्मा या खुद सर्वशक्तिवान या सर्वोच्च, ऐसा तो नहीं हो सकते कि जो सर्वोच्च होगा वो किसकी पूजा करेगा, किसकी साधना करेगा। तो इट मीन्स कि भगवान को हम बोलते हैं जी ओ डी, गॉड, जेनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉय करने वाला या डिस्ट्रक्शन करने वाला, कराने वाला, इन तीन शक्तियों से वो तीन कार्य करते हैं। जेनरेट करने का काम, उत्पत्ति का काम ब्रह्मा जी के द्वारा, ऑपरेट करने का काम, चलाने का काम विष्णु जी के द्वारा, और डिस्ट्रॉय करने का, डिस्ट्रक्शन का काम शंकर जी के द्वारा। तो परमात्मा खुद विनाश नहीं करते, ये प्रकृति को हम इम्बैलेंस कर देते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है तो अपने आप विनाश हो जाता है। तो महादेव उसका रूप दिखाए गए हैं कि नेचर इम्बैलेंस हो गई, तीसरा नेत्र खुल गया और विनाश हो गया। तो हमारा अज्ञानता का अंधेरा दूर करने का तरीका यही है, उनको सब साधना करते हुए स्टेबल दिखाया गया। स्थिरता दिखाने का क्या मतलब है, इसी दुनिया में रहेंगे आप, यहाँ से जाने के बाद, मधुबन से, आबू से जाने के बाद, आप कहाँ, अच्छा बहुत लगता है, कई लोग ऐसा बोल रहे होते हैं कि यहाँ तो जी एक महीना रहना चाहिए, यहाँ 15 दिन तो कम से कम रहना चाहिए, है ना, 4 दिन रहने को मिलते हैं, ये मिठाई टेस्ट करने जैसा ही है। अब आपने जाके वहाँ मिठाई बनानी है, घर में, परिवार में, वायुमंडल में ये मिठाई बनानी है, तो इसके लिए वहां जाकर आपको महादेव बन के रहना है। कैसे रहेंगे, एक बार राजा जनक को उनके एक शिष्य ने, जो उनके गुरुजी थे अष्टावक्र, अष्टावक्र के एक शिष्य मिलने के लिए आए राजा जनक को, क्योंकि अष्टावक्र जी ने बहुत प्रशंसा की थी राजा जनक की कि वो विदेह है, वो देह में रहते हुए डिटैच है, उनको विदेह कहते हैं। तो वो कैसे डिटैच रह पाते हैं देखिए जाकर। तो वो अष्टावक्र का शिष्य ऋषि उनसे मिलने आए, तो उन्होंने महल में जाकर उनके दरबार में ये प्रश्न पूछा कि आप विदेह कैसे रह पाते हैं सब सुख भोगते हुए, हमारे पास तो राजकाज भी नहीं है, आपकी तरह सुख भी नहीं है, तो इतने सुखों में राजकाज के टेंशन में रहते हुए आप विदेह कैसे रहते हैं। तो राजा जनक ने कहा ठीक है, मैं इसका उत्तर शाम को दूंगा, संध्या काल में। तब तक आप हमारी मिथिला नगरी में घूम कर आइए। अब उसका मिथिला नगरी में घूमने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन राजा ने कहा है कि ये उसकी शर्त है, आप मिथिला नगरी में घूम कर आइए तो मैं शाम को इसका उत्तर दूंगा। और जब वो रथ उनके लिए तैयार कराया गया, सारथी तैयार हुआ, सुंदर रथ तैयार किया गया, जब वो रथ में सवार हुए मिथिला नगरी घूमने के लिए, तो राजा जनक ने उनको सुंदर सी थाली में, सोने की थाली में एक मिट्टी का तेल से भरा हुआ जलता हुआ दीपक उसमें रख दिया और उसे कहा कि आप आराम से घूमिए सारी मिथिला नगरी में, बस इतना सा ध्यान रखना कि तेल छलकने ना पाए और ये दीपक बुझने ना पाए। क्या बोला? उसने कहा ठीक है, जब आप मुझे जलता हुआ दीपक देंगे तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब ठीक है, वो आराम से घूमे, ये हमारी रानी का महल है, ये सीता का महल है, यहाँ सीता अपनी सखियों के साथ खेलती है, ये बगीचा है, ये सुंदर गार्डन, ये मुख्य बाजार है, सब कुछ दिखाया सारथी ने, सब कुछ दिखाया, कहीं जूस पिलाया, कहीं फल खिलाए, बड़ी खातिरदारी हुई। और शाम को जब वो वापिस आए तो उन्होंने जलता हुआ दीपक वापिस दिया, जहाँ तेल कम हुआ वहाँ सारथी तेल भी डालेगा उसमें। तो जलता हुआ दीपक जब वापिस किया तो राजा जनक ने पूछा कि हे ऋषिवर, आपने वो महल देखा जिसके परकोटे पर चढ़कर हमारी रानी करवा चौथ का चांद देखती है? तो उसने कहा मैंने तो नहीं देखा। और सारथी ने कहा जी मैंने सब कुछ दिखाया है, मैंने तो दिखाया है, तो क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? सारा ध्यान दीपक पर था कि दीपक बुझने ना पाए और तेल छलकने ना पाए। राजा जनक ने कहा बस इतना सा ही काम मैं करता हूं, इतना सा ही काम करता हूं, महादेव बनने के लिए फोकस्ड रहना कितना जरूरी है, कि आपको जो कार्य करना है, जो कार्य दिया गया है, आप उसी पर फोकस रहें, कि मैं यही करता हूं, मैं सब राजकाज संभालते हुए, सब सुख सुविधाओं में रहते हुए भी मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मेरा आत्मा रूपी दीपक मध्यम ना पड़ जाए, इसकी ज्योत मध्यम ना हो जाए, दीपक बुझ ना जाए ये दीपक, तो मैं इस पर अटेंशन देता हूं। अगर इसकी ऊर्जा कम हुई, इसकी शक्ति कम हुई, तो परमात्मा से कनेक्शन कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस पर ध्यान देता हूं। तो मैं सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता। अब आप ये सोचें कि मैं ऑफिस का काम भी करूं, मैं फैशन भी करूं, मैं घूमूं फिरूं भी, मैं बढ़िया खाना भी बनाऊं, तो मैं मिसाइल भी बनाऊं, तो मैं ये काम भी करूं, मैं इंटरनेट पर भी सब कुछ देख लूं, तो ये सब कुछ मैं करूं, तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। बच्चों को क्यों बोलते रहते हो बेटा मोबाइल पे लगे रहोगे तो पढ़ोगे कब ना? तो इसीलिए जितने फोकस्ड हैं कि सब कुछ करते हुए मेरी खुशी, मेरी संतुष्टि का लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, सब कुछ करते हुए परमात्मा से कनेक्शन कट नहीं होना चाहिए, सब कुछ करते हुए मुझे महादेव समान रहना है, लिप्त होकर परेशान नहीं होना, तो आप ऐसा बन पाएंगे। कैलाश पर्वत पर जंगल में रहते हो भी स्थिर रह पाएंगे, ये सारा दुनिया का जंगल ही तो है, और इस जंगल में कितना कुछ सुनने को और देखने को मिलता है, तो इन आंखों की खिड़कियों से जो कुछ आप देखते हैं उस सभी में मुझे स्टेबल रहना है। कर सकेंगे ऐसा, प्रयास करेंगे, तो आप यहां से महादेव बनकर ही जाएंगे, तो अपने महादेव बनने की खुशी में ये आपके हाथ में है, इट इज इन योर कंट्रोल। दूसरों को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद के मन को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। आप ये कर सकते हैं, तो आज से ही शुरू कर दें। परमात्मा से दोस्ती होती जाएगी, संबंध जुड़ता जाएगा, और आप फील करेंगे कि वो परम धाम से मुझे सुधारने के लिए आया है। आप यहाँ बैठे हैं, आप आए नहीं हैं, वो आपको लेकर आया है। उसने सुबह आपको जगाया है, उन्होंने सुबह आपको यहाँ लाकर बिठाया है, ये उसकी प्लानिंग में है। आपको देवता बनाना ये भगवान की प्लानिंग है, तो इसीलिए जब उसकी प्लानिंग में है तो मैं क्यों परेशान हूँ, मैं थोड़ी जोर लगाऊंगा, कुछ खास करना ही नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ उनकी प्लानिंग को स्वीकार कर ले, जो उन्होंने कहा वो स्वीकार कर ले, आप वैसा बनते जाएंगे। तो दिस इज गॉड्स प्लानिंग कि आप यहाँ हैं और मेडिटेशन सीखने के लिए आए हैं। तो कुछ विशेष बातें, परमात्मा वैसा ही है जैसे आप हैं, आप निराकार ज्योत स्वरूप, भगवान निराकार ज्योति स्वरूप, उस परम ज्योति से मिलना है। दुनिया के संत महात्मा गुरु आचार्य देवी देवता सबने परमात्मा से ऊर्जा लेकर काम किया है, आप भी परमात्मा से ऊर्जा लेकर इस दुनिया में महादेव बनकर कार्य करेंगे। और साथ साथ जब शिवरात्रि आएगी, शिवरात्रि आने में अभी कुछ समय है ना, अभी लगभग 6 महीने हैं, मार्च में होगी या फरवरी में होगी, तो लगभग 4 महीने आपके पास हैं। तो लास्ट में एक काम और करना है, शिवरात्रि के दिन हम शिव बाबा पर बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, भांग के पत्ते या भांग घोटकर, धतूरा है ना, और क्या चढ़ाते हैं उन पर, बेलपत्र और ऐसी ऐसी चीजें, बेलपत्र, बेर, दूध में पानी डालकर ऐसी चीजें चढ़ाते हैं। ये आज से ही चढ़ाना शुरू कर देंगे तो महादेव बनना और इजी हो जाएगा, है ना। बेर जैसा साधारण फल और दूध में पानी जैसी साधारण चीज हम भगवान पर चढ़ाते हैं, देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाते। इसका मतलब है अपने ऑर्डिनरी सोच, साधारण सोच, साधारण बातें, ये रोज शिव बाबा पर चढ़ानी है, रोज। बिल्कुल साधारण चीजें, क्या खाया, क्या खाना है, क्या पहना, क्या पहनना है, कल क्या पहना था, आज क्या पहनना है, कितनी साधारण बातें हैं। जो महान बनने वाले लोग हैं वो ऐसी बातें सोचते हैं क्या? मदर टेरेसा ने सोचा होगा कभी कि आज कौन सी साड़ी पहनूं, आज कौन सा पर्स उठाऊं, आज कौन से शूज पहनूं? हमेशा सफेद साड़ी, नीली किनारी वाली, है ना। इसे जितनी भी महान आत्माएं हैं वो खाने पीने पहनने का नहीं सोचती रहती। तो ये बेर जैसा साधारण फल, दूध में पानी जैसी कच्ची लस्सी, ये रोज ही चढ़ानी है शिव बाबा पर। धतूरा तो बिल्कुल ही चढ़ा देना है। धतूरा माना कड़वे बोल, कड़वी दृष्टि, कड़वा व्यवहार। ये ना कहो हम तो पंजाबी हैं, हम तो हरियाणवी हैं, हमारी तो भाषा ऐसी है, हम तो ऐसे करते हैं। नो, जब आपको प्यार से बोलना होता है ना, वहां भी प्यार से बोलना आता है आपको। जो बात धीरे बोलनी है वहां भी धीरे बोलना आता है। तो इसलिए धीरे बोलना, कम बोलना, मीठा बोलना, छोटा सा स्लोगन है, ये याद रखना है और अप्लाई करना है। और धतूरा रोज चढ़ाना है। आपने कड़वा बोलकर किसी का दिल तोड़ा तो वो भी आपका दिल तोड़ेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा फिर। तो इसीलिए ये धतूरा भी रोज चढ़ाना है। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, वो पूरा पत्ता बनता ही है 3 पत्तों से, तो तीनों पत्ते चढ़ाना माना मन, बुद्धि, संस्कार। मन में सब तरह के थॉट भगवान को अर्पण, जो वो सोचने को कहे वही सोचना है। बुद्धि अपने कोई डिसीजन नहीं, जो वो डिसीजन देगा, जो भगवान का निर्णय वही मेरा निर्णय है, और उसका निर्णय दया, प्रेम, कृपा से भरा हुआ होता है। जो उसके संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं, ये याद रखना है। तो ये बात याद रखेंगे तो आप रोज वो बेलपत्र भी चढ़ा देंगे। और भांग के पत्ते तो यही छोड़कर जाने हैं। 10 साल रिटायर हुए हो गए, मैं DIG हूँ, मैं ब्रिगेडियर हूँ, मैं चीफ इंजीनियर हूँ, रिटायर हुए 15 साल। अरे भाई वो खत्म हो गया। ये तो वैसा ही है जैसे आपने देखे होंगे ना, बल्ब पे लिखा होता है 100 वाट, 10 वाट, 200 वाट। अब जो फ्यूज हो जाता है, लिखा तो उस पर भी हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है ना, फ्यूज हो गया, लिखा हुआ 200 वाट। तो इसका अर्थ है ये वाले जो भांग के पत्ते हैं ना, पोस्ट, पोजीशन, शक्ल, सूरत, सारी जिंदगी में एक बार मिस यूनिवर्स बनी, मिस इंडिया बनी, सारी जिंदगी बोलती रहती है, एक साल के लिए बनते हैं बस, अगले साल दूसरी मिस यूनिवर्स आ जाती है, दूसरी मिस इंडिया, दूसरी मिस वर्ल्ड। तो इसीलिए एक साल की कीमत या 60 वर्ष तक की कीमत, बड़ी पोस्ट 3-4 वर्ष ही रहती है बस। 3-4 वर्ष के लिए चीफ इंजीनियर बने, 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बने बस, और सारी जिंदगी उसकी पूंछ लपेट के रखते हैं। तो इसीलिए ये भांग के पत्ते, पोस्ट, पोजीशन, शक्ल, सूरत, धन, सबको पता है, यही रह जाती है, सबको पता है। आप इतने बड़े 200 गज के, 300 गज के मकान में रहते हैं, शमशान घाट में कितने गज मिलती है जगह? बस 2 गज। सबको, झुग्गी में रहने वाले को भी, 8 कनाल के घर में रहने वाले को भी, एक जितनी जगह मिलती है। इसीलिए उसको बोलते हैं शमशान, जहां सबकी शान समान हो जाती है, शमशान। तो इसीलिए ये भांग के पत्ते भी रोज चढ़ाने हैं शिव बाबा के ऊपर, ठीक है? तो ये सच्ची शिवरात्रि मनाने तक, 4 महीने बाद फरवरी तक रोज की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको याद रहेगा कि आप शिव बाबा के घर में आए थे, शिव बाबा के यहाँ ज्ञान सुना आपने और आप महान बन गए। और इसके रेगुलर करने के लिए आप जहाँ से आए हैं अपने अपने सेंटर्स पर अवश्य जाएंगे, ताकि रेगुलर जो चढ़ावा चढ़ाना है शिव बाबा पर, वो रेगुलर चढ़ाते रहें। रोज भांग के पत्ते, रोज धतूरा, हर रोज दूध पानी, हर रोज बेर, सब कुछ चढ़ा देना है। और यहाँ क्या लगा के घूमना है? चंद्रमा। ओम शांति। अभी 5 मिनट एकदम स्थिर होकर हम बहुत प्यार से उस प्यारे शिव बाबा को याद भी करेंगे, शुक्रिया भी करेंगे और टिक जाएंगे जैसे गोपियां टिक जाती थी। सब कुछ भूल जाएं, आप कौन, कहां से आए, मेल, फीमेल, ये सब 5-7 मिनट के लिए भूल जाएं। स्वयं को याद करवा दें। मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूं। मस्तक में चमकता हुआ डायमंड हूं। मस्तक में चमकता हुआ हीरा की चमक आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। फील करें, आप आत्मा इन आंखों की खिड़कियों से देखते हैं। इन आँखों की खिड़कियों से जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब हलचल पैदा करने वाला है, विनाशी है, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी आप शांत और शक्तिशाली रह सकते हैं। फील करें आपके चारों तरफ परमात्मा पिता की लाइट और माइट फैली हुई है। महसूस करके देखें कि मस्तक से आत्मा सितारा निकलकर अपने असली घर में है। परम धाम सचखंड मेरे पिता का असली निवास स्थान है। सुंदर लाल सुनहरा प्रकाश है वहां। महसूस करें अनगिनत सफेद चमकते हुए सितारे इस घर में विराजमान हैं, जहां शरीर नहीं, आवाज नहीं, डीप साइलेंस है, गहन सन्नाटा और शांति है। आप चमकती हुई ज्योत आप चमकता हुआ हीरा परम ज्योति के सम्मुख हैं। आप शांत हैं, शक्तियों से भरपूर हैं, महसूस कीजिए आप आत्मा चार्ज हो रहे हैं पावर हाउस शिव बाबा से। एकदम सीधे होकर, अलर्ट होकर इस फीलिंग में बैठेंगे कि परम ज्योति से आप आत्मा ज्योति शक्तियां ले रही हैं, निरंतर चार्ज हो रही है। मस्तक में ज्योत चमक रही है, आप आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। महसूस कीजिए प्यारे प्रभु ने अपनी ऊर्जा और शक्तियों से भरपूर करके आपको भेजा है इस दुनिया में महादेव समान पार्ट प्ले करने के लिए। शुक्रिया प्रभु। एक मिनट के लिए आप सभी प्यार से खड़े होंगे बिना आवाज किए। अपना सीधा हाथ अपने दिल के पास रखेंगे। थैंक्स बाबा, शुक्रिया प्रभु, आपने मुझ आत्मा को योग्य समझा और आज कितने सुंदर पवित्र स्थान पर आप लेकर आए। इतना ऊंचा ज्ञान सुनने का स्वर्ण अवसर दिया, दिल से थैंक्स करेंगे। शुक्रिया प्रभु, थैंक्स बाबा। इस दुनिया में सब कुछ अच्छे से अच्छा आपने दिया है। मैं आत्मा भी अच्छे से अच्छा रोल प्ले करूंगी। शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद बाबा। एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे सभी। ये वो अभ्यास है जो आप दिन में कई बार कर सकते हैं। गॉड नीड्स नो फॉर्मेलिटी। सुबह जल्दी उठना इसीलिए हम कहते हैं ताकि सुबह आप एक लंबी नींद के बाद फ्रेश उठते हैं तो दोस्ती का प्यार का थोड़ा ज्यादा मजा आता है। वरना दिन में आप कभी भी भगवान को याद करें, प्यार करें और यहाँ से जाने तक, शिवरात्रि के दिन तक, आप महादेव की तरह शांत रहें, अचल अडोल रहें, निश्चिंत रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चंद्रमा समान शीतल रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।